विषयवती प्रवृत्ति के नास्ता अगरपा जेहवा अगरपा आदि पांच स्थान है, वहां मन को स्थिर किया जाता है। ऐसे विशोकावृत्ति से हरित पाद में मन को स्थिर किया जाता है, उसको क्रिया कहते हैं। पहले रजोगुण, फिर तमोगुण से उत्पन्न जो शोक मोह आदि के उनका समाधान कर लेने से और अज्ञान अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश जला देने से सतोगुणी निर्मल व्यक्ति उत्पन्न होती है, उससे मन स्थिर हो जाता है। अभ्यास ये है कि हृदय स्थान में एक कमल जैसी सूक्ष्म ग्रंथि है, उसको हृत पद्म कहते हैं। उसकी आठ पंखड़ियां हैं, सुख नीचे जड़ ऊपर की को है, मुख नीचे है जड़ ऊपर को है, पंखड़ियां बंद है। प्राणायाम के व्यास द्वारा इस अधोमुख कमल का मुख ऊपर को सीधा किया जाता है, जैसे फूल की कली खिलकर फूल के रूप से विकसित हुई है। इस कमल के नीचे में ओंकार स्थित है, जिसका आ सूरज रूप, वो चंद्र रूप, मां अग्नि मंडल रूप है। उसके ऊपर अर्ध मात्रा ब्रह्मानंद स्वरूप है। उस कमल की करणिकाओं में ऊपर की ओर मुख ये सुखमना नाड़ी है, उसी के अंतर्गत ब्रह्म नाड़ी है जो मूर्धा तक चली गई है। मूर्धा के बाहर भी इस ब्रह्म नाड़ी का सुगंध सूरज लोक आदि लोकों में है। इसी नाड़ी के चित्त का निवास है। ध्यान योग तथा प्राणायाम के आधार पर जब हृत पद्म का साक्षात्कार एवं विकास किया जाता है, तो उसके निवास करने वाला चित सूर्य चंद्र मणि आदि ज्योतिषों के रूप में दिखाई पड़ता है। इस साक्षात्कार को ज्योतिषमेति कहते हैं। इसके उदय होने पर राजतम से उत्पन्न शोक आदि शांत हो जाते हैं, इसीलिए इसको विशोकावृत्ति कहते हैं। मन की शिथिलता का और अपावी दसवे हैं। वीतराग विषया वचित्तम सूत्रार्थ अथवा वीतराग पुरुषों राग मोहरहित योगियों का विषय करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। विषय तो मतलब अनुभव करने वाला। जिन पुरुषों के राग द्वेष नाश हो चुके हैं, जैसे सुखदेव आदि, उनको ते बनाकर उसके सादृश अपनी भावना करने से एवं अपनी मानसिक स्थिति उन्हीं के समान बना देने से उन्हीं के समान अनुभव होने लगता है। योगी का चित कैसा निर्मल है, केवल इतना कहना ही पर्याप्त नहीं, किंतु उन्हें अपने निर्मल चित से संसार के पदार्थ कैसे लगते होंगे, कहते उन सब के बारे में योगी का मन जो सोचता और अनुभव करता होगा, उस अनुभूति की भावना अपने मन में लेने के लिए अपने चित्त को योगी के चित्त की स्थिति में पहुंचाना पड़ता है। ये साधना पर मन निर्मल होता है। पांचवा अपाद असरे हैं स्वप्न निंद्रा ज्ञान अवलंबन वा अवलंबन वा। सूत्र का भाव स्वप्न और निंद्रा ज्ञान का सहारा लेने वाला मन स्थिर होता है। अर्थ स्वप्न देखे हुए अलौकिक पदार्थों से कभी कभी चित्त को बड़ा आनंद होता है, ऐसा जागृत अवस्था में नहीं होता। जैसे किसी इष्ट देव के दर्शन होना, राजा योगी जामा पुरुष हो जाना अथवा कोई असाधारण सुखी सफलता पाना, इस हालत में अति हर्ष होना, उसकी भावना स्वप्न की याद करते हुए करने से भी मन में वशीकार होता है। ये साधन को वे ही साधक कर सकते हैं जिसने जागृत की अपेक्षा कभी कोई स्वप्न में असाधारण आनंद देखा होवे। अथवा ये संसार क्षण भंगर है और स्वप्न के समान है। ऐसी दृढ़ भावना करते रहने से बराग हुंदा है और मन संसार तृष्णाओं की व्यर्थता और समझ कर स्थिर हुंदा है। अथवा गाढ़ निद्रा में सुख दुख से रहित होकर जब केवल चित्त की वृत्तियों के अभाव का ज्ञान रहता है, किसी अन्य पदार्थ की प्रतीति नहीं रहती, उस ज्ञान को अंतःकरण में लाने से चित्त स्थिर हो जाता है। अथवा जैसे स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में जागृत विषय का ज्ञान तथा इंद्रियों की चंचलता नष्ट हो जाती है, वैसे ही ज्ञान के आश्रय से बहिर्मुखी वृत्तियां नष्ट हो जाती है, तब चित्त स्थिर होता है। मनुष्य की रुचि अनेक प्रकार की होती है, जिस वस्तु में जिसकी अधिक रुचि हो उसका वह ध्यान करे, यही कहते हैं। यथा अभिमध्यानात्वा, अथवा जिसको जो अभिमत अनुकूल हो उसके ध्यान से मन स्थिर होता है। पहले दसे हुए साधनों में से कोई साधन यदि साधक के अनुकूल नहीं पड़ता हो तो अपनी इच्छा अनुसार चुने हुए या अपने इष्ट देव के स्वरूप का ध्यान करने से मन स्थिर होता है। सारांश यह है कि चित्त स्थिर करने के लिए मन को किसी ऐसी स्थूल मूर्ति में लगाना चाहिए जो साधक को अति प्रिय हो, चाहे वह मूर्ति पिता माता गुरु भाई आदि की हो। स्थूल मूर्ति में चित्त स्थिर हो जाता है, पुनः पुनः व्यास से सदैव स्थिर रहता है। चित्त के स्थिर होने पर उसका स्वरूप क्या विषय होता, अगले सूत्र में दसते हैं। परमाणु परम में तत्वंतो वशीकारा, उसी समय इसका परमाणु से लेकर परम महत्व तक वशीकार हो जाता है। अर्थ पहले बताए हुए अपाओं से मन की स्थिरता और एकाग्रता हो जाने पर वह इतना नियंत्रित हो जाता है कि साधक जहाँ चाहे वहाँ छोटे से छोटे परमाणु से लेकर आकाश तक किसी भी पदार्थ या तत्व में लगाना चाहे तो बिना चंचलता प्रकट किए उसी में लग जाता है। एकाग्रता के द्वारा मन का वशीकार होना महान सफलता है। वशीकार से योगी का चित्त परिपूर्ण होकर स्थिर होता हुआ फिर अभ्यास कर्म की अपेक्षा नहीं करता। साधु को चाहिए पहले किसी अनुभवी निस्वार्थ पथ प्रदर्शक से जय क्रियात्मक विधि सीखे और अभ्यास करने के लिए एकांत स्थान में शुद्ध हो, प्रातःकाल कम से कम 2-3 घंटे और शाम को 2 घंटे ध्यान करना चाहिए। पद्मासन दोनों जंघाओं को दोनों पैरों से दबाकर अथवा सिद्ध वज्र स्वस्तक आसन से सिर गर्दन पीठ को सीधा करके खेचरी मुद्रा से बैठे और अपक्ष पदार्थों का सेवन मादक शराब भंग सुल्फा सिगरेट आदि का सेवन न करे। लाल मिर्च खटाई तेल गिरिष्ठ ते खुआदक जड़ियां भारियां चीजा बाती कफ वर्धक तीक्षण पदार्थ सेवन ना करे। ऐसा भी पदार्थ ना सेवन करना चाहिए जैसे आलस रोग पैदा हो, मैथुन कुसंग क्रोध शोक भय उत्पन्न करने वाली बातें तथा परीक्षम ना करना चाहिए। शरीर शुद्ध अंतों में मल ना रहे, इसके लिए धोती नीति करनी चाहिए। शरीर ब्रह्मचर्य के समान मानसिक अध्यात्मक ब्रह्मचर्य आवश्यक है। पहले अनुभवों को दूसरे से ना कहना चाहिए, इस प्रकार वातावरण अच्छा होने से कार्य में सफलता शीघ्र होती है। पूर्वोक्त अपाओं से जब साधक का अपने चित्त पर अधिकार हो जाता है और चित्त निर्मल होकर समाधि की क्षमता आ जाती है, तो उसके बाद किस प्रकार संप्रज्ञात और निर्बीज समाधि प्राप्त होती है उसको कहते हैं। क्षीण वृत्तेर अविजातस्यैव मणेर ग्रहितु ग्रहण ग्रहेषु तत् सत् और दंचिंता समापति। व्यक्तियों के क्षीण हो जाने से स्फटिक मणि के समान जब मन हो जाता है और वैगृहिता आत्म ग्रहण अंतःकरण इंद्रियां तथा ग्राहज पंच भूत व उनके विषय में स्थित होकर तदाकार हो जाता है, तो वही समापति संप्रज्ञात समाधि है। समाप्तरत पहले कहे हुए पांव से मन की रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियां जब क्षीण हो जाती है तब साधक में केवल सतोगुण ही रह जाता है। चित्त निर्मल होकर स्फटिक मणि अथवा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाता है, जैसे जिस रंग का पदार्थ उसके सामने रखा हो उसी रंग का दर्पण में नजर आता है। जब एकाग्र शुद्ध चित्त सतोगुणी वृत्तियों के संपर्क संबंध में आता है तब वह भी सत्व और ओतप्रोत दृष्टि गोचर होता है। आत्मा मन इंद्रियों और बाहर विषय सत्व प्रधान होते हैं। इस तदाकार तन्मयता में जो स्थिति प्राप्त होती है उसे समापत्ति समाधि अथवा संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। समापत्ति के चार भेद कहते हैं।